नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सरकार द्वारा संसद में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संपन्न, सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज सवेरे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की है और एकमत से अपना समर्थन व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अध्यक्षता में संसद में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के कई नेताओं को शामिल किया। श्री सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में उन्हें जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक को रचनात्मक बताया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्होंने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया। AIMIM नेता असाउद्दीन अवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सशस्त्र बलों की सराहना की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि द रेसिस्टेंट फोर्स DRF के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका को इसे आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राज्यसभा में सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई नेता बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये बैठक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के एक दिन बाद हुई। इससे पहले श्री डोभाल ने पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों से भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि भारत का स्थिति को और बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं, लेकिन यदि पाकिस्तान उकसावे वाले कोई कार्रवाई करता है तो भारत उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की है। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने के संबंध में भारत के दृष्टिकोण के प्रति अपनी सहमति साझा की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दिखाई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत ने उन आतंकियों और उनकी ढांचागत सुविधाओं को नष्ट कर दिया है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। श्री चौहान ने टिप्पणी नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि खरीफ अभियान 2025 की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने कल रात भी बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा से लगे 4 सेक्टरों अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला और उड़ी में गोलीबारी जारी रखी। भारतीय सेना ने इसका समुचित उत्तर दिया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि कल हुई भारी गोलीबारी में सबसे अधिक प्रभावित पुंछ सेक्टर में 13 लोग हताहत हुए थे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले ने भारत को सीमा पार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश किया था। उन्होंने कहा है कि भारत की प्रतिक्रिया लक्षित तथा नपीतुलित थी और हमारा इरादा स्थिति को बिगाड़ने का नहीं था। डॉ जयशंकर ने कहा कि यदि भारत पर कोई सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बहुत ही सख्ती से उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री डॉ सईद अब्बास अराकची के साथ भारत ईरान 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सीमा सुरक्षा बल ने आज तड़के फिरोजपुर सेक्टर में हुए पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार अंधेरे का फायदा उठाकर वो सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर जाने जानबूझकर बर रहा था जब सतर्क जवानों ने उसे ढेर कर दिया। उसका शव पुलिस को सौंप दिया गया है। इसी बीच अटारी सीमा को आम जनता के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान में दो अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 14 कर्मियों की मौत हो गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले ने पाकिस्तान को हताश कर दिया है और वह झूठी खबरें तथा गलत सूचनाएं फैलाने का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शानदार सैन्य जीत और वीरतापूर्ण जवाबी कार्रवाई की मनगढ़ंत कहानियां चलाई जा रही है। ये मीडिया को गुमराह करने के और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने तथा जनता की धारणा में हेरफेर करने के पाकिस्तान के जानबूझकर किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। वही पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे दुष्प्रचार की इस घड़ी में श्रोताओं के लिए ये जरूरी है कि वे हर सूचना की सावधानी पूर्वक जांच करें। अगर आपको भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से जुड़ी कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है तो आप इसकी सूचना PIB फैक्ट चेक को दें। आप ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799611259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर साझा कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन ले, नंबर है 8799711259। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज सुबह माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में तेलंगाना पुलिस की विशेष बल इकाई ग्रेहाउंड के 3 जूनियर कमांडरों को मार गिराया। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि मुलुगुल जिले के वजीदू पेरुरु वन क्षेत्र में कमांडो के नियमित अभ्यास के दौरान ये विस्फोट हुआ था। परिवर्तनकारी पहल प्रोजेक्ट डीजी कक्षा के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से अरुणाचल प्रदेश के कुरुंकुमे जिला उपायुक्त विशाखा यादव और सर्कल ऑफिसर चाउ वाईपेंग मानपोंग को आज सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह अभूतपूर्व परियोजना इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे नवाचार और समर्पण डिजिटल डिवाइड को पाट कर हमारे राज्य की सबसे दूर दराज के इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला सकते हैं। श्री खांडू ने कहा कि प्रोजेक्ट डीजी कक्षा दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में छात्रों को आशा और प्रगति की किरण के रूप में कार्यरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन चुका है। श्री गडकरी ने यह बात आज नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय BBB सम्मेलन और बायो एनर्जी वैल्यू चेन एक्सपो को संबोधित करते हुए कही। श्री गडकरी ने आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी इलाके में आज सुबह करीब 9:45 एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर के चालक सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी पश्चिम और मध्य भारत के में बारिश होने और गरज के साथ तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में आज भारी ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चल सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, कुरुंकुमे, पापुमपारे, सियांग, दिवांग वैली, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कल से अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिला स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम UPR में शुरू होने वाला है जो आगामी 18 मई तक खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट में 6 देश हिस्सा ले रहे हैं। ग्रुप ए में बांग्लादेश, भूटान और मालदीव शामिल है जबकि ग्रुप बी में भारत, श्रीलंका और नेपाल शामिल है। उद्घाटन मैच कल शाम 7:30 पर भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 से हरा दिया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।